नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देशवासियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खाते में महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रूपए की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 संकल्प दिए हैं। श्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में आयोजित कार्यक्रम में देशवासियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, बाजरे का इस्तेमाल करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, तेल का इस्तेमाल कम करने और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की।
हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे, देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति मिल रही। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें।
प्रधानमंत्री ने आज जिन 9 प्रस्तावों का जिक्र किया उनमें से एक हमारी पुरानी पांडुलिपियों का संरक्षण भी है। उन्होंने कहा कि हमारा पुराना ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवद गीता केंद्र सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है।
साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। आज सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में विनिर्माण, खनन, परिवहन और बैंकिंग क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के कारण GDP में तेज वृद्धि संभव हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP में वृद्धि की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस वृद्धि दर को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि यह सरकार की नीतियों और सुधारों के प्रभाव का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इससे देश की जनता के परिश्रम और उद्यमिता का भी पता चलता है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार सुधारों को आगे बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन आसान बनाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10 लाख जीविका दीदियों के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रूपए प्रति लाभुक की दर से 1,000 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की 9,50,000 और शहरी क्षेत्र की 50,000 महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से राशि भेजी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को अपनी पसंद का कारोबार शुरू करने के लिए यह सहायता दी गई है।
कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1,46,00,000 महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही, यानी कुल मिलाकर 1,56,00,000 महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में राशि अंतरित करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 1,40,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में योजना की राशि भेजी जा चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार ने चुनावपूर्ण वादे के अनुसार महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रूपये भेजे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि एनडीए विपक्ष की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करती है।
देखिए, सरकार ने वादा किया था कि महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी स्वरोजगार के लिए हम लोग 10 हजार रूपया सीड मनी देंगे कि 1,51,00,000 महिला को पहले ये राशि उनके खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा चुका है। ये सरकार का वादा है कि हम सभी परिवार के एक महिला को और करीब ये जो है 3 करोड़ से ऊपर महिलाएं होंगी और सभी के खाता में जो है ये पैसा जाएगा। विपक्ष ने इस तरह का अब्बा उड़ाया था कि चुनाव के बाद ये पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज ये पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगा, यानी सरकार ने जो वादा किया है वो वादा हमारा जो है आज दिखाई पड़ेगा।
जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रूपये भेजे जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव से पूर्व सरकार ने जो भी वायदे किए हैं वे सभी पूरे किए जाएंगे।
चुनाव परिणाम आने के बाद न जाति देखा न धर्म देखा, कोई दलाल और मक्कार नहीं। 10 लाख महिलाओं के खाता में 10 हजार रुपया स्थानांतरित किया और साथ ही साथ केवल यही नहीं विराम लगना है, 2 लाख तक की वित्तीय सहायता महिलाओं को दी जाएगी। असहज दर्द होता रहे लेकिन महिलाओं का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार को मिला है वह कायम रहेगा।
इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान शुरू की गई इस योजना से केवल कुछ महिलाओं को ही लाभ हो रहा है।
सरकार ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के क्रम में भी 10 हजार रूपया महिलाओं के खाते में डाले थे, इस पर चुनाव आयोग ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारी पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती रह गई थी, तो चुनाव के समय ही सरकार ने ये घोषणा किया था, 10 हजार रूपया 2 लाख रूपये की बात कही गयी थी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धति की जानकारी ली। इधर मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच पहुंचकर 5000 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से निर्माणाधीन अस्पताल के नए भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और स्वास्थ्य सचिव के साथ अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत स्पष्ट नीतियों, सतत कार्रवाई और व्यवहारिक धरातल पर किए जा रहे प्रयासों के जरिए बाल विवाह का उन्मूलन करने की राह पर है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का लेख साझा करते हुए यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि इस लेख में बाल विवाह मुक्त भारत का आह्वान किया गया है। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि नए लेबर कोड से सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। आकाशवाणी समाचार पटना से विशेष बातचीत में श्री आनंद ने कहा कि नए कानून से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
पहले तो मैं बता दूं कि ये जो 4 श्रम संहिताएं लागू हुई हैं ये एक ऐतिहासिक कदम है। पहले जो न्यूनतम मजदूरी की दर थी वो कुछ चिन्हित अधिसूचित प्रतिष्ठानों में ही लागू थी, लेकिन अब सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, जो नियोजकों को मजदूरी का भुगतान समय पर और निश्चित तिथि में करना होगा। पूरे देश में न्यूनतम वेतन का एक समान आधार तय होगा। केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए फ्लोर वेज से किसी राज्य में मिनिमम वेज कम नहीं रखा जा सकता है, यह इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है।
गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एनडीए सरकार पूरी तत्परता से काम करेगी। श्री चौधरी ने आज पटना में कहा कि सभी तरह के संगठित अपराध में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्राओं से दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो दस्ता भी तैनात किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली से ऑडियो संदेश के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री पासवान ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में पार्टी ने कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाले समय में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद पार्टी के सांसद शांभवी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के उत्थान के लिए पार्टी शुरू से समर्पित रही है।
आज लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 25 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर हम याद करेंगे हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को, जिन्होंने दलित वंचित शोषित वर्ग की राजनीति करते हुए उस पूरे वर्ग को एक मजबूत आवाज दी। बिहार में जो दलित वंचित शोषित वर्ग थे उनकी मजबूत आवाज बनकर उनके अधिकार की एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच से आगे बढ़ रही है और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जिस मजबूती से हम लोग आज काम करें इससे ज्यादा मजबूती से हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे।
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज विकास भवन स्थित अपने कक्ष में खेल विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार खेल विश्वविद्यालय और बिहार खेल अकादमी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गोवा में 56वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य समापन समारोह आरंभ हो गया है। 20 नवंबर से शुरू हुए इस फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में अनेक सितारे भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर भी शामिल हैं। इस वर्ष फिल्मोत्सव में 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई गई। निगरानी ब्यूरो की टीम ने सिवान जिले के हसनपुर अंचल के सर्किल इंस्पेक्टर सह राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन से संबंधित दस्तावेज पास कराने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर पटना से पहुंची निगरानी ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद में सबसे कम 11.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं पूर्णिया में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के शेखपुरा सिकंदरा मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने अंतर जिला हथियार तस्कर गिरोह के 2 अपराधियों को 2 पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया में एसएसबी की 56वीं बटालियन ने भारत नेपाल सीमा से 96 किलो गांजा बरामद किया। रोहतास के जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि रबी सत्र 2025-26 के लिए यूरिया सहित सभी प्रमुख उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। कैमूर जिले की भभुआ सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने आज अल्ट्रासाउंड का उद्घाटन किया। नई व्यवस्था शुरू होने से मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देशवासियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खाते में महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।